साथियों नमस्कार। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से जिला समन्वयक दिनकर पातुकर आज विश्व सर्प दिवस के अवसर पर हमारे साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वन्य प्राणी रक्षक एवं सर्प मित्र रूबरू होने जा रहे हैं और इनसे रूबरू कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मोबाइल वाणी के नागपुर प्रतिनिधि एवं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरीश जी देशमुख जी को कि वे आज विश्व सर्प दिवस के अवसर पर इस परिचर्चा को प्रारंभ करें।
नमस्कार दिनकर जी, जैसा कि आज जागतिक सर्प दिवस है और 16 जुलाई पूरे देश में मनाया जाता है, बाहर भी मनाया जाता है, और हमारे साथ में जो बताया गया है कि संजय इंगित निगावकर जी है जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, 35 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। वे अच्छे कवि भी है, लेखक भी है, गीत रचयिता भी है और काफी समाचार पत्रों के संपादक है, पुरोगामी विचार के व्यक्ति है और विशेष तौर पर सर्प के बारे में काफी ज्ञान उनको है। वन्य जीव रक्षक है वर्धा जिले के और शासकीय स्तर पर इकाई में उनका महत्व है और सर्प मित्र वहां पर काफी चलते हैं। सर्प विज्ञान अभियान भी समिति की ओर से जो वर्धा में चलाया गया था उसमें सक्रियता से उन्होंने भाग लिया था। अच्छा अध्यक्ष है सर्प जी। और दूसरे हमारे साथी हमारे मोहगांव संसद के वहां पे है, मध्य प्रदेश के विक्की कांबरी जी भी है, तो हम इनसे कुछ जानकारी लेके हमारे जो मोबाइल वाणी के जो श्रोता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आदि क्षेत्र क्षेत्र में प्रसारित होता है ग्राम वाणी है, तो इस बारे में मैं संजय जी से पहला सवाल कर रहा हूँ कि साथी हमारे श्रोताओं को बताइए संजय जी कि सर्प जातियाँ कितने प्रकार की होती है, उनकी जातियाँ क्या है, ये थोड़े समझने की कोशिश कीजिए संजय जी।
जी सभी को नमस्ते।
नमस्कार सर।
मैं तो जी
नमस्कार सर।
नमस्ते। शुरू में मैं मोबाइल वाणी के सभी संयोजकों का साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस खास अवसर पर इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। सभी श्रोताओं को भी हार्दिक प्रणाम। जैसा कि पूछा गया मुझे कि कितने जाति के साथ हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो दुनिया में करीबन 3,500 जाति के सांप पाए जाते हैं पूरे विश्व में, और अगर भारत की का हम बात करते हैं तो हमारे देश में भारत में करीबन 270 जाति के सांप हैं। अब 270 जाति के सांप तो हमारे देश में हैं, लेकिन बहुत ही कम सांप जिन्हें उंगलियों पर गिन सके ऐसे कम सांप हैं जो विषैले हैं, जहरीले हैं। इन जहरीले सांपों में हमारे क्षेत्र में खासकर मध्य भारत में जहाँ मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, ये जो सेंट्रल का सेंट्रल इंडिया है, तो उसमें प्रमुख विषैले सांप जो है वो सिर्फ 4 सांप है। सबसे जहरीला सांप जो है वो मण्यार है, जिसे हम करेट क्रेट मनियार कहते हैं। दूसरा जो सांप है घोनस दबोइया, जिसे रसेल्स वाइपर कहा जाता है। तीसरा जहरीला सांप है हमारे यहाँ पाया जाने वाला फुरसा अफाई, जिसे सॉस्केल्ड वाइपर कहते हैं। और चौथा जहरीला सांप है जो सभी लोग जानते हैं, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से परिचित है, वो है नाग कोबरा। अब नागों में भी किंग कोबरा पाया जाता है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में नहीं है, वो गोवा में, केरला में और कुछ जगहों पाया जाता है। सी स्नेक है जो जहरीला है, लेकिन वो समुद्र में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो पाए जाने वाले खासकर सांप है ये 4 ही किस्म के है, नाग घोणस फुरसे और मण्यार। इसके अलावा सेमी वेनमस जिसे कहा जाता है नीम विषैले जो सांप है, तो उसमें हरा सांप आता है जिसे मराठी में हिरवा चापड़ा कहा जाता है या बाम्बू पीट वाइपर कहते हैं उसे। फुरसा है सॉस्केल्ड वाइपर जो तो मुख्य सांपों में मैंने बताया आपको। सेमी वेनमस जो है उसमें और एक सांप है बिल्ला सांप मांजरिया कैट स्नेक कहते हैं उसको। हरा सांप है हरनटोल वाइन स्नेक। तो इस टाइप के कुछ सांप और जो पूरी तरह जहरीले नहीं है, जिनके दांत अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और जो काटने के बाद ज्यादा असर इंसान पर या किसी जानवर पर नहीं होता, इसलिए उन्हें सेमी वेनमस कहा जाता है। इसके बावजूद जो खास सांप खासकर हमें हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं बगैर जहरीले नॉन वेनमस सांप, तो उसके उसमें अजगर है, अंधा सांप यानी वाड़ा है, खापर खौलिया मतलब बांडा सांप, धामीन है, धूल नागिन है जिसे दौड़ाक भी कहा जाता है, पांदीवड़ है पनीहा, जिसे डेंडू भी कहा जाता है, डेंडू। कवड़िया सांप है जिसे शंकरा या कवड़ी सर्प कहा जाता है। तस्कर है, रुखई है जिसे झाड़ सांप कहते हैं। नानेटी, नानेटी आपके क्षेत्र में भी है, हुखा सांप। गौतिया सांप है जिसे हराना कहा कहते हैं। दुर्गिया घोड़ा माटी का सांप। मांडोर जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती रहती है, वो दो मुहा सांप, जिसे माना जाता है कि दो मुंह होते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में उसे रेड सैंड बोआ कहते हैं। अंडी भक्षक सांप भी अपने आप पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ सांप है जो जहरीले नहीं है। तो ये जो प्राथमिक जानकारी है सांपों के बारे में मैंने आपके सामने रखी।
बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने रखी है। और थोड़े श्रोताओं को ये भी समझाए संजय जी कि जहरीले सर्प के लक्षण और पहचान कैसे की जा सकती है, जहरीले यदि कोई सर्प है तो।
जी आमतौर पर देखने में तो सभी सांप हमें एक जैसे लगते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मणियार सांप है वो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सामान्य सांप है, कुछ खास नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप करीबन 4 से 5 गुना बाकी सांपों से उसकी टॉक्सिसिटी वेनम की ज्यादा है, वो इतना जहरीला है। और कुछ बगैर जहरीले सांप है वो दिखने में जहरीले लगते हैं लेकिन वो बगैर जहरीले है। तो सिर्फ देखने से कोई भी सांप हम अंदाजा नहीं कर सकते कि ये जहरीला है या बगैर जहरीला है। हाँ, कुछ सांपों के यानी जहरीले सांपों के जो मुंह होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन उसके कारण भी हम उसे जहरीला ऐसा मानेंगे नहीं, क्योंकि अजगर है उसका मुंह चौड़ा होता है लेकिन वो जहरीला नहीं है। न वो किसी इंसान को निगल सकता है, लेकिन उसके बारे में भी कई भ्रम है। तो अब ये चार मुख्य स्वरूप सांपों के, मुख्य सांप जो मैंने बताया उनके बारे में उनकी पहचान मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो नाग है जो फन निकालता है और अपने लंबाई के करीबन 1/3 वो फन स्टैंड कर सकता है, खड़ा रह सकता है। कई नागों के फन पर अलग अलग चिन्ह होते हैं, किसी के इस पर 10 का आंकड़ा हम लोग कहते हैं वो दिखता है, किसी को स्पेक्टेकल कहते हैं, एकाक्ष कहते हैं, एक आंख उसके पीछे साइड में दिखती है, फन के पीछे रहती है वो। चित्र निकालते वक्त तो हम उसके सामने ऐसा 10 का आंकड़ा निकालते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पीछे के साइड में प्रिंट होता है उसके। और उसमें से कई सांप ऐसे भी होते हैं जिसे हम डोम्या कहते हैं या गवाड़ा कहते हैं, तो उस पर कोई ये भी नहीं रहता, चिन्ह भी नहीं रहता है, लेकिन वो भी जहरीले नाग है। तो जो फन निकालता है वो नाग, वो जहरीला है, नाग की वो पहचान है। और वो आवाज भी करता है, फुट ऐसे आवाज करता है, वो बताते रहता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे दूर रहना, मेरे करीब मत आना, तो ये इशारा वो देता है। दूसरा एक सांप है जो बहुत स्पीड से बाइट करता है, यानी सेकंड में 2 या 3 बार बाइट कर सकता है, इतनी स्पीड उसकी है। वो है घोनस, दबोइया। उसकी ये और एक खासियत है कि वो किसी भी साइड में अटैक कर सकता है। अगर उसकी आदत है, वो ऐसा पूरा कॉइल खुद को बना लेता है और उसके बीचों बीच मुंह रखता है उसका, लेकिन अटैक करते वक्त किसी भी साइड कर सकता है वो, तो ये अंदाजा नहीं उसका आ सकता आपको। ये भी बहुत जहरीला सांप है, बहुत बड़े पैमाने में वो अपना वेनम, अपना जहर सामने जिसको बाइट किया उसके शरीर में छोड़ सकता है। ये सांप की एक खासियत है कि वो जिस क्षेत्र में है, आपके खेतों में घूम रहे होंगे या फिर मैदान में चल रहे होंगे, टहल रहे होंगे, और झाड़ी में या घास में अगर ये होगा घोनस, तो वो अपना इशारा देता है। वो कुकर की सीटी जैसे बजते हैं वैसी विसल वो देता है और बताता है आपको कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझसे दूर रहना, दूर से जाना। तो जैसे भी आपको उसकी सीटी सुनाई दे तो आपने सावधान होना है और दूर जाना है। तीसरा फुरसे सांप है जिसके शरीर पर कुछ खौले रहते, खौले मतलब बदन का कुछ हिस्सा ऊपर की सीने हो ऊपर आई हुई रहती है, थोड़ी से अलग 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 सेपरेट वो दिखते रहते हैं। तो अपने बदन को ही घिसते रहता है खुद, और उसमें से जैसे आरी से हम कुछ लकड़ा काटते हैं तो वैसी आवाज वो निकालते रहता है। फुरसे बहुत छोटा सांप होता है, 1 या 1.25 फीट का, हार्डली 1.5 फीट का सांप होगा वो, लेकिन वो भी जहरीला है। और वो तिरछा दौड़ता है सांप, जैसे नागमोड़ी तरीके से जो चलते रहते हैं तो वो तो उस तरीके से चलता ही है, लेकिन तिरछा उछलते उछलते जाते हुए हमें दिखता है वो, तो उससे से भी पता चलता है कि ये फुरसा है। और चौथा सांप जो है वो मणियार कॉमन क्रेट। तो कॉमन क्रेट उसका कलर जनरली ब्लैक रहता है, डार्क ब्लैक या ब्लीच ब्लैक दिखता है वो। और उसके पूरे बदन पर रिंग्स रहते हैं, दो दो की जोड़ी रहती है और वो सफेद पॉइंट्स की और रिंग रहती है, इसीलिए मणि मणि की माला जैसी उसकी लपेटी हो उस पर वैसा दिखते रहता है, इसलिए उसे मणियार कहते हैं। तो ये चार प्रमुख विषैले सांप है हमारे क्षेत्र में दिखने वाले।
अच्छा, ये विषैले सर्प के बारे में आपने बताया, लेकिन ये तो संजय सिगावर जी एक महत्वपूर्ण है कि सर्प संबंधी हमारे समाज में फिल्म के कारण बोलो या जनमानस काफी अंधविश्वास है कि सांप बदला लेता है, डसता है, या वो दूध पीता है, उसे सब आप आने से संपत्ति बढ़ती है वगैरह वगैरह, इस अंधविश्वास के बारे में थोड़ा श्रोताओं को समझाइए।
जी जी, सच्चाई ये है कि न केवल गारुड़ी जो है उन्होंने ये फैलाई हुई बातें है, तो उतना ही जिम्मेदार हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर टीवी चैनल्स और उसके पहले फिल्मों में बड़े पैमाने पर से अलग अलग फिल्में निकली है, कुछ सीरियल्स बने हैं सांपों पर, और उसमें फिर ये सब बातें दिखाई जाती है, गलत तरीके से दिखाया जाता है। वैज्ञानिक रूप में सोचने की आदत हम लोगों को नहीं है, इसलिए हम ऐसे फिर कथित बातों पर हम विश्वास रखते हैं और उसमें से फिर अंधविश्वास बढ़ते जाते हैं। तो सांपों के बारे में जो अंधविश्वास समाज में फैले हुए, उसके और भी कुछ कारण है, जो कारण पूजा करने के है वही कारण या उसमें से कुछ कारण उसके बारे में अंधश्रद्धा अंधविश्वास जुड़ने के भी है। जैसे कि सांप काटने से इंसान को दर्दनाक मौत आती है, ये हमारे मन में बसा हुआ है, इसलिए सांप उनसे डरते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसके बारे में अंधविश्वास भी रखते हैं। तो जो डर है, डर भी इसका कारण है अंधविश्वास फैलाने का, और उसकी मदद भी किसानों को, खेतों को सांपों के कारण मदद भी होती है। जो चूहे अनाज फसलें जो खड़ी रहती है खेतों में उसको कुतरती है, तो उन चूहों को कंट्रोल करने का काम सांप करते हैं, या फिर हाँ, और बाकी भी जिनका जो जो नुकसान पहुंचाने वाले कुछ है जीव जंतु है खेतों में रहने वाले, उनका सफाया करने का काम भी सांप करते हैं, इसलिए भी सांप हमारा मित्र है, किसानों का मित्र है, और इसलिए भी उसकी पूजा की जाती है। हमारे पुराण कथाओं में भी, पुराणों में भी, या फिर हमारी लोक संस्कृति में, जन साहित्य में भी सांपों के बारे में कई कहानियां हैं। वो हमारे हमें अलग अलग तरीके से मिलते रहता है, कभी वासुकी के रूप में मिलता है, कभी कालिया के रूप में, कालिया मर्दन जो कृष्णा ने किया था उस रूप में मिलता है, कभी शेषशया पर विराजित भगवान विष्णु की प्रतिमा में हमें दिखता है वो, तो कभी भोलेनाथ के गले में नागमाला धारण किए हुए नाग देवता हमें दिखती है, खांडव वन में भी नागवंशों का संवार हमारे तो इतिहास का, यानी सिर्फ पुराणों तक सीमित नहीं रहता, केवल दंत कथा तक सीमित नहीं रहता, तो फिर इतिहास को भी जुड़ता है, और हमारी मूल निवासी वंश परंपरा जो थी उसका संवार की बातें जब आती है तब भी वो हमें उस रूप में मिलता है, नागवंश के रूप में मिलता है। उसके बारे में जो महाराष्ट्र में कथाएं बताई जाती है कि बड़े राजा था, किसान था, उसके फिर हल के नीचे सांप आया, उसका परिवार मर गया, फिर नागिन ने बदला लिया, और उसमें से फिर ये बदले वाली कहानियां, फिर नाग का शाप, उपशाप, फिर उसकी उपासना करना, ये सब बातें फिर उसमें से जुड़ी गई है। तो सांपों के बारे में फिर खासकर जो त्योहार माना जाता है नाग पंचमी, उससे भी कई बातें जुड़ी हुई है।
हाँ, तो नागपंचमी बोले तो मुझे एक घटना याद आ गई संजय जी के, नागपुर में एक अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा एक तांत्रिक को एक्सपोज किया गया था। वो तो तांत्रिक का ये दावा था, ये पुजारी था, और ये हमारे मोदी नंबर दो में नागपुर में सावरटी में बड़े शहर में, वो एक नागपंचमी के दिन में नाग नागिन का जोड़ा हवा में उड़ते हुए आता है, और वो दिन भर हाथ में पकड़ के जो श्रद्धालु वहां पे आते थे नागपंचमी के दिन, वहां पैसे दे रखते थे और उनका दर्शन कराता था। लेकिन जब समिति के तो कोई मामला आया तो हमने ये जान लिया कि अंधविश्वास का मामला है, हम वहां पे गए और पुलिस को शिकायत की, तो ये पाया गया जब उसको पुलिस ने हिरासत में लिया कि भाई तूने सर पे हाथ में पकड़ के रखे दिन भर, उनको खिलाया नहीं पिलाया नहीं है कुछ, तो भी ये साफ सही भी बता कि हवा से निकले कि अपने आप निकले करके, तो उसने आखिरी में कबूल किया कि ये सर्प है, मैं 100 रुपए देके किसी मदारी के तरफ से मैं सुबह मुझे लाके देता है और शाम को मैं उसको फिर धोती नहीं धोती कपड़े वस्त्र देता हूँ, दिन भर मेरे पास में रखता हूँ, बाद में देता हवा में से उड़कर नहीं आती, ये उसने कबूल किया और उसको कुछ कानून के तहत गिरफ्तार किया। कहने का मतलब ये अंधविश्वास के चलते इस प्रकार के बातें समाज में चलती रहती है।
बिल्कुल
संजय जी, मैं आपसे फिर से मैं बात करूंगा, लेकिन इसके पहले दिनकर जी पात्र जी हमारे साथ में संवाददाता, वे हमारे गाँव से भी एक वहाँ पे हमारे साथी है, उनसे कुछ सवाल करेंगे, बाद में मैं कुछ बातें फिर अपने संजय से करूंगा।
धन्यवाद देशमुख सर, जैसा कि अभी इंग्लिश आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत विस्तृत जानकारी दे दी है टापू के बारे में, और हमारे साथ आज जो अन्य वक्ता जुड़े हैं वो महुगांव नगर से जुड़े हुए हैं, और विशेषकर उनके नगर से ही एक सरपन नदी बहती है, कहावत है कि वहां पर जो नदी है जिसमें जो पत्थर मिलते हैं वो सांप के आकार के मिलते हैं, और उसी नदी के किनारे पर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग नाम का मंदिर भी है। तो ऐसे नगर से हमारे साथ जुड़े हैं विक्की कांबड़े जी, और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में सांप पकड़ना प्रारंभ किया। तो मैं आज विक्की जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो सांप पकड़ने की जो कला है इनके बीच में कैसे आई, और इन्होंने इस काम की शुरुआत कैसे की। हेलो, हाँ विक्की जी,
मोबाइल वाणी संवाद जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता दिनेश जी पातुरकर जी को, और उनके साथी जो नागपुर महाराष्ट्र से जुड़े हैं उनका। तो मैं बताना चाहता कि जो मेरा जो क्षेत्र है मोहगांव क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में मैं काम करने जो आया तो इस प्रेरणा से आया कि जो मोमेडियन समाज होते थे वो तब मैं आठवीं या नौवीं क्लास में अध्ययन था, तो मोमेडियन समाज के जो लड़के थे वो नदी में से सांप निकाल के उनको मारने का काम करते थे। तो उनको देखते देखते फिर मैंने सोचा कि ये जब मार सकते तो अपन इनको बचा सकते हैं। तब से फिर ये सांप पकड़ने का कार्य शुरू हुआ, और विज्ञान की कक्षा सातवीं में आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे भी कहा गया था कि सांप आहार श्रृंखला का मुख्य आधार है। तो तब से फिर प्रेरणा आ गई कि नहीं, अब अपन जो मार रहे हैं उनको कहेंगे कि या आप सांप को ना मारे, हम बचाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार इस कार्य में रुचि आई तो हमने ये काम चालू कर दिया।
विक्की जी, जब आपने पहली बार सांप पकड़ा और आज तक आपने कितने सांप पकड़े, और इसके लिए आपने अपना यानी प्रेरणा स्रोत किसे माना, आपको किसी ने ट्रेनिंग दिया, कहीं से आप सीखे, ये भी श्रोताओं को बताने का कष्ट करेंगे।
जी, मैंने इस काम के लिए छिंदवाड़ा से हेमंत गोदरे जी से कांटेक्ट किया, फिर उनको ये सूचना दिया कि सर ऐसी ऐसी बात है कि मेमोडियन समाज के जो लड़के होते हैं वो सांपों को मारते हैं, तो क्या हम इस सांप को बचा सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ बचा सकते हैं, तो उन्होंने इस कार्य की मुझे ट्रेनिंग दी गई एक साल की, फिर उसके बाद मुझे इस कार्य के लिए हरी झंडी दिखाई। तो तब से मैंने इस अपने सौसर क्षेत्र में करीबन 300 से 400 सांपों का रेस्क्यू कर उसे जंगल में रिलीज कर दिया है, और साथ ही में जो मोमेडियन समाज के जो लड़के होते थे उन्हें भी संदेश दिया कि रिया जब आप अपने जान को बचा सकते हैं तो हर प्राणी भी अपने जान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, तो इसलिए उस सांपों को भी ना मारे।
कांबड़े जी, अभी हाल ही में आपने दो मयूर को भी बचाया, तो वो कहाँ मिले आपको घायल अवस्था में।
जी, वो दो जो मयूर मोर होते हैं वो मुझे मेरे ही फ्रेंड यानी हेमंत जी कलम्बे के खेत में मिले थे। जैसे कि वो उनके पापा का टिफिन लेके खेत में गए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को मोबाइल के माध्यम से जानकारी दिया कि कि भाई मेरे खेत में दो मोर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, तो क्या आप इसका रेस्क्यू कर सकते क्या? तो फिर मैं तुरंत ही वहां पे गया, देखा तो मोर की हालत जो थी वो गंभीर थी, तो मैंने उस मोर का रेस्क्यू किया और तत्काल इसकी जानकारी दिया और उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद उनको वन विभाग के सुपुर्द दे दिया गया।
हमारे साथ कामरे जी के साथ साथ अंग्रेजी भी जुड़े, अंग्रेजी से भी मैं जानना चाहूंगा कि जो
जी
समाज में और देश में एक अंधश्रद्धा बहुत फैली हुई है कि झाड़फूक से सांप के काटने का जहर उतरता है, क्या ये बात सत्य है?
बिल्कुल असत्य है। किसी भी मंत्र में, किसी भी जड़ी बूटी में, किसी भी बाबा में ऐसी कोई दैवी शक्ति, कोई ताकत अलौकिक नहीं है कि जिससे वो जहरीले सांप का विष उतार सके,
जहर उतार सके।
जी, कोई भी ऐसा मंत्र मारा हुआ ताबीज नहीं है कि जिसके कारण जब बांधने से सांप नहीं काटेगा या काटने के बाद भी उसका जहर नहीं चढ़ेगा, तो ऐसा कोई ये नहीं है। मंत्र में कोई तथ्य नहीं होता, मंत्र तो जस्ट पठन का एक साधन है, उसके अलावा उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं होती कि जिसका प्रभाव अपने शरीर पर हो सके, इंसान के शरीर पर हो सके। कई बार ये देखा है कि क्योंकि पहले, अभी तो हमारे यहाँ गारूडी नहीं रहे, गारूडियों को क्या कहते हैं हिंदी में? हेलो
हेलो, बोलिए।
मदारी,
हाँ मदारी या गारूडी जो भी पहले खेल दिखाते थे वो अब नहीं रहे, लेकिन पहले ऐसा करते थे कि मेरे पास एक ताबीज है वो आप खरीद लीजिए 100 रुपए में 50 रुपए में, वो आप बांधिए तो आपको सांप नहीं काटेगा, सांप ने काटा तो भी उसका जहर नहीं चढ़ेगा और जहर कुछ असर भी नहीं करेगा, इस तरीके से वो बताते रहते थे। कोई बाबा धागा देते कुछ ये देते है कि धागा बांध लीजिए आपको कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ और लोग मंत्र तंत्र वाले जो रहते हैं तो वो कहते हैं कि आपको सांप ने काटा है तो मैं पानी में फूंक मारता हूँ, मंत्र मारता हूँ, वो पानी पी लीजिए तो आपका सांप का जहर नहीं चढ़ेगा। तो अच्छा ये है कि जब गारूडी लोग खेल दिखाते हैं, चौक में खेल दिखाते हैं सांपों का, और गलती से पहले तो वो विषैले सांप के दांत निकाल लेते हैं, लेकिन दांत आने बार बार आते रहते हैं, वो प्रक्रिया शुरू रहती है दांत आने की, गलती से किसी जहरीले जहरीला सांप कोई नाक गारूडी को काटता है तो वो खुद के ताबीज पे, खुद के मंत्र पे भरोसा नहीं रखेगा और पहले सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में दौड़ते हुए जाएगा। ये सच्चाई है क्योंकि उसको पता है कि मैं ताबीज सिर्फ मेरे बेचने के लिए, पैसे कमाने का साधन नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, वो जानता है। तो किसी भी मंत्र में ये शक्ति नहीं कि सांपों का जहर उतार सके।
बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर।
हेलो दिनकर जी।
हाँ बोलिए सर।
दिनकर जी, इसी उपलक्ष्य में मुझे ये बात आ रही है कि जो रैशनलिस्ट मूवमेंट बुद्धिवादी संगठन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के समान चेन्नई में एक ऐसे प्रयोग किया गया था कि एक मांत्रिक ने ये कह दिया कि कोई जहरीला सांप भी काट देता है किसी मनुष्य को तो मैं उसका जहर मंत्र से उतार सकता हूँ। तो वहां पर किसी आदमी को आगे लाने के बजाय बुद्धिवादी संगठन ने एक ऑक्सीजन कुत्ते को आगे लाया, एक बहुत बड़ा शामियाना तैयार किया, पूरे प्रशासन ने पूरे स्कूल को छुट्टी दी गई और स्टेज के ऊपर उस मांत्रिक को बुलाया गया और एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कुत्ता था बड़ा, वो कुत्ता लाया गया, वो ढेर सारे सर्प लाए गए जिसमें कोबरा जाति के थे या बड़े विषैले जाति के थे, वो सर्प से उसको डसा गया और बाद में उस तांत्रिक को कहा गया कि अभी झाड़फूक कर और पूरा उसके लिंबी के पत्ते लाए, नीम के पत्ते, और उसको झाड़फूक किया, मंत्र पढ़े, लेकिन 20 मिनट में ही वो कुत्ता मर गया। और वहां पे जो 25,000 स्टूडेंट वहां पे आए थे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और ये सिद्ध किया कि किसी भी मंत्र से या किसी तांत्रिक से जहरीले सर्प का विष नहीं उतर सकता, ये खतरा है, इससे बचो। तो मैं हमारे साथ संजय जी से ये भी बताऊंगा, यदि किसी जहरीले सर्प ने यदि काट दिया तो किस प्रकार से उपचार करना चाहिए और महाराष्ट्र में इसके बारे में कानून क्या है, ये अंत ये बताइए प्लीज।
जी जी, एक तो अगर हम जहाँ सांप ने किसी को काटा है वो क्षेत्र अगर अस्पताल से बहुत दूर है तो एक तो फर्स्ट एड प्रथमोपचार हमने करने चाहिए, लेकिन प्रथमोपचार के जो पुराने तरीके हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो पहले बताया जाता था कि जहाँ सांप ने काटा है उसके ऊपरी हिस्से में आप ब्लेड से कट मारिए तो फिर वो जहर ऊपर नहीं जाएगा वेन से, तो ये बहुत गलत तरीका है। ये हो सकता है उसमें कि सांप के जहर से तो नहीं मरेगा इंसान, लेकिन अगर मेन वेन्स मुख्य नस हमारी अगर कट जाती है तो ब्लीडिंग के कारण, खून बहने के कारण इंसान की मौत हो सकती है, तो ये गलत तरीका है। बैंडेज बांधने का भी कुछ तरीका है। शुरू में कहा जाता है जहाँ सांप ने काटा उसके ऊपर, यानी कलाई पे अगर हाथ को काटा है सामने पंजे पे तो कलाई पे बांधिए, लेकिन फिर उसमें कुछ बदलाव आ गए, पाव पर नीचे अगर काटा है तो आप उसके ऊपरी हिस्से में बांधे, बाद में बताया गया कि नहीं आप यानी हाथ को काटा है तो फिर दंड को आप बांधिए। लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी जो आई है तो पूरे हाथ पर लपेटे हुए जाता जो ड्रेसिंग का कपड़ा जैसे रहता है वो बनता है तो वो बांधा जाता है, तो जिसको इसका नॉलेज है उसी ने ये किया तो बेहतर रहता है। फर्स्ट एड का खून खून चूस के निकालने का एक तरीका बताया जाता है, कई फिल्मों में हम लोगों ने देखा है हीरोइन को सांप काटता है और हीरो फिर अपने होठों से मुंह से वो चूसता है, वहां से जहर खींच लेता है वो खून में फैला हुआ, तो वो भी बहुत गलत तरीका है। कोई अगर वो जहर अपने मुंह से निकालने की कोशिश करता है और उसके मुंह में अगर छाले होंगे, कई जख्म होंगे अंदर, तो वो खुद को वो जहर का असर हो सकता है खून निकालने जहर निकालने वालों को, तो ये भी गलत तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका इसमें का ये है कि जिसको बाइट हुआ है उसको ज्यादा हलचल न कर देते हुए उसको उठाकर स्ट्रेचर पर या गाड़ी में डाल के सीधा अस्पताल ले जाए, और आज की तारीख तक अब तक यही है कि एकमात्र उसमें औषध है हमारे देश में एएसवी एंटी स्नेक वेनम प्रति सर्प विष, इसके अलावा कोई भी दवाई कोई भी मंत्र कोई भी जड़ी बूटी सांप का विष नहीं उतारती, सांप का जहर नहीं उतारती, इतना अपने मन में अपने ठान लेना चाहिए।
अंतर ये भी बता दीजिए कि महाराष्ट्र में कैसे कानून है इसके बारे में, प्लीज 2 मिनट में।
जी जी सांपों के बारे में यानी सांपों को हैंडल करने के बारे में जैसा एक कानून है जो वन्य जीव के बारे में जो है जिसे हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, वन्य जीव प्रतिबंध कायदा 1972 का, वो सांपों का व्यापार करते हैं सांपों को हैंडल करते हैं या बाबा कोई सांप दिखाता है अपने पास रखता है तो उन पर असर करने वाला उनको शिक्षा सजा देने वाला ये कानून है। तो वैसे ही महाराष्ट्र राज्य में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन का कायदा अंधविश्वास निर्मूलन का कायदा जो
बना है
स्थापित हुआ है बना है तो उसके अंदर भी एक कलम की तरतूद की गई है, उसको डाला गया है जादूटोना विरोधी कायदा उसे कहते हैं, तो उसमें ये गुना जो भी इंसान जो भी बाबा गारूड़ी या जो भी कोई होगा जो कहता है कि मैं कुत्ते का सांप का जहर उतारता हूँ बिच्छू का जहर उतारता हूँ बिच्छू का जहर उतारता हूँ, और अगर वो इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से हमें रोकता है और उसके बजाय वो डॉक्टरी इलाज से रोकता है और वो कहता है कि मंत्र तंत्र गंडे तो रस्ते सब हो जाएगा, तो उस पर दखल पात्र गुना माना जाता है और अजामीन पात्र यानी बेलेबल नहीं है, ये बेल भी उसको नहीं मिल पाएगी इस गुने में। साथ ही अगर वो गंभीर स्वरूप का गुना अगर जज को लगता है उस तरीके से अगर वकील रखता है उसे तो उसको 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का दंड किया जाएगा, जुर्माना भरना पड़ेगा उसे। कम से कम सजा इसमें 6 साल की तो होनी होनी है और 5,000 रुपए का फाइन भी उसको लगना है।
बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, काफी अच्छी जानकारी दी है दिनकर जी, आप उसका समापन कीजिए प्लीज दिनकर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर उपस्थित होकर आज विश्व सर्प दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है
जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्ते।